नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हुआ। अमेरिकी सेना ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाया, साथ ही 16 ईरानी जहाजों को नष्ट किया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 40 करोड़ बैरल आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर सहमति जताई। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर करने में भारत की भूमिका की सराहना की। ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शेष वंशानुगत सदस्यों को हटाने वाले विधेयक को मंजूरी और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री नई दिल्ली में शुरू। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष का आज 12वां दिन है। पिछले कुछ घंटों में अब तक की सबसे गंभीर घटनाएं देखने को मिली हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी सेना ने 16 ईरानी नौकाओं को नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई उन रिपोर्टों के बाद की गई जिनमें कहा गया था कि तेहरान ने ऐसे विस्फोटक उपकरण तैनात करना शुरू कर दिया है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक को अवरुद्ध कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि ये हमले संघर्ष शुरू होने के बाद सबसे भीषण हमले साबित हो सकते हैं। इनमें कथित तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अवसंरचना और ड्रोन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा नई चेतावनी जारी करने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। IRGC ने घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अमेरिका, इसराइल या किसी भी सहयोगी राष्ट्र के किसी भी जहाज को वैध लक्ष्य माना जाएगा। ईरानी सैन्य कमांडरों ने कहा है कि जब तक ईरानी शहरों पर बमबारी जारी रहेगी वे क्षेत्र से एक लीटर भी तेल बाहर नहीं जाने देंगे। खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने 11 मार्च 2026 से एकीकृत उच्च सतर्कता की स्थिति घोषित कर दी है और सभी 6 सदस्य देशों तक फैले ईरानी हमलों के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को अविभाज्य बताया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे अधिक हमलों को रोका है, जिसमें आज सुबह रियाद के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागी गई 6 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार भी शामिल है। कतर और कुवैत ने भी आवासीय और ऊर्जा अवसंरचनाओं पर सीधे हमलों की सूचना दी है, जिसमें कतर के महत्वपूर्ण LNG निर्यात में बाधा भी शामिल है। जहां तक कि ओमान के तटीय तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने पश्चिम एशिया के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खाड़ी सहयोग परिषद के एक प्रस्ताव पर मतदान करने का कार्यक्रम तय किया है। इसमें ईरान से पड़ोसी अरब देशों पर हमले रोकने का आह्वान किया गया है। इस बीच इसराइल ने तेहरान पर भारी बमबारी के बाद हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। इन हमलों को युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे भीषण बताया गया है। इसराइल के ईरान समर्थित हिजबुल्ला समूह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाने के बाद बेरूत और दक्षिणी लेबनान में भी विस्फोटों की खबर है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आज अपने इतिहास में सबसे बड़ी मात्रा में आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर सहमति व्यक्त की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पेरिस में ये एजेंसी सदस्य देशों के रणनीतिक भंडारों से 40 करोड़ बैरल तेल उपलब्ध कराएगी। एजेंसी के सदस्य देशों के पास वर्तमान में 1 अरब 20 करोड़ बैरल से अधिक सार्वजनिक आपातकालीन तेल भंडार है। इसके अलावा 6 करोड़ बैरल औद्योगिक भंडार भी उपलब्ध है। यह निर्णय क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरे को देखते हुए लिया गया है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला कर होर्मुज जल डमरू मध्य से माल ढुलाई को लगभग रोक दिया है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने एजेंसी के अनुरोध के बाद अपने रणनीतिक तेल भंडार का कुछ हिस्सा जारी करने की पुष्टि की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने आज विश्व स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में भारत की भूमिका की सराहना की। श्री गौर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका मानता है कि रूस से तेल की निरंतर खरीद इसी प्रयास का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत तेल के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और शोधकों में से एक है। श्री गौर ने यह भी कहा कि दोनों देशों के नागरिकों के लिए बाजार में तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका और भारत का मिलकर काम करना आवश्यक है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष और संबंधित राजनयिक प्रयासों पर भारत के विचार साझा किए। दोनों मंत्रियों ने भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग एजेंडा की भी समीक्षा की। इससे पहले श्री जयशंकर ने यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की। उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट से भी बात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी सहयोग परिषद और पश्चिम एशियाई देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
हमारे दो भारतीय नागरिक मारे गए हैं और एक लापता है। ये घटना तब हुई जब वे जहाजों पर थे और उस पर हमला हुआ। जीसीसी क्षेत्र में कुछ भारतीय नागरिक घायल हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है और हमारा दूतावास उनके साथ लगातार संपर्क में है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में फारस की खाड़ी में 28 भारतीय जहाज कार्यरत हैं।
फारस की खाड़ी क्षेत्र में कुल 28 भारतीय जहाज संचालन कर रहे हैं। इनमें से 24 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में हैं। इन जहाजों पर कुल 667 नाविक मौजूद हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व में 4 जहाज हैं जिन पर 101 भारतीय नाविक सवार हैं।
भारत ने आज दोहराया कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों की जान को खतरे में डालना या किसी भी तरह से नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। होर्मुज जल डमरू मध्य में थाई जहाज म्यूरे नारी पर हुए हमले के संबंध में जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में वाणिज्यिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाए जाने पर भारत गहरा खेद व्यक्त करता है। ब्रिटेन की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड से शेष वंशागुणत सांसदों को हटाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे कुलीन वर्ग को जन्म से ही उच्च सदन में सीट प्राप्त करने वाली सदियों पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया है। सरकार ने कहा कि उच्च सदन में सदस्यता जन्म के आधार पर सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कल शाम वंशानुगत पीयर्स विधेयक पारित किया। इसके साथ ही 25 वर्ष पहले शुरू किए गए सुधार और प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर सरकार के उच्च सदन के आधुनिकीकरण का प्रमुख वादा पूरा हो गया है। ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन में कुल 800 सदस्य हैं। इनमें से अधिकांश को प्रधानमंत्री राजनीतिक दलों या एक स्वतंत्र आयोग की सलाह पर आजीवन नियुक्त करते हैं। इनमें चर्च ऑफ इंग्लैंड के बिशप भी शामिल हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता आज नई दिल्ली में शुभारंभ हो गया। ये प्रतियोगिता 13 मार्च तक चलेगी। एक रिपोर्ट।
पेरिस 2024 के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, प्रवीण कुमार और मरियप्पन थंगावेलु सहित भारत के शीर्ष पैरा एथलीट के इस प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के एथलीटों के लिए 74 अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्लॉट उपलब्ध होंगे। भारत, रूस, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बोस्निया और मिस्र सहित 8 देश के एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में सबसे अधिक 219 एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। भारत ने पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। स्पोर्ट्स डेस्क से मैं प्रशांत कुमार।
अमेरिका के कुछ हिस्सों में आए तूफान के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 10 लोग घायल हैं। तूफान से इलिनॉइस और इंडियाना में कई घर भी तबाह हो गए हैं। इलिनॉइस, इंडियाना, केंटुकी और ओहायो राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हुआ। अमेरिकी सेना ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाया, साथ ही 16 ईरानी जहाजों को नष्ट किया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 40 करोड़ बैरल आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर सहमति जताई। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर करने में भारत की भूमिका की सराहना की। ब्रिटेन की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शेष वंशानुगत सदस्यों को हटाने वाले विधेयक को मंजूरी दी और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।